की याद ने दुनिया को भुला दिया।
हम सभी आवाज का एक हम सभी आत्म पंछी बन अपने वतन में उड़ जाएंगे। आत्मा पंछी के समान है, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है। तो मैं आत्मा भी उड़ता पंछी बन अपने वतन में पहुंच जाऊं। क्योंकि अब मुझे वापस घर जाना है, अब हमारी रिटर्न जर्नी है। जिस घर से हम आए थे उसी शांति धाम, मुक्ति धाम, परम धाम, निर्वाण धाम में हमें वापस जाना है। और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है। अति शुद्ध, अति पवित्र, संपन्न और संपूर्ण भरपूर स्थिति में जाना है। शिव बाबा के संग में आत्मा फिर से अपने ओरिजिनल चार्ज को पालेगी। जैसा मेरा अनादि स्वरूप था वही स्वरूप मुझे वापस लाना है। मैं आत्मा अति शुद्ध हूँ, बेदाग हीरे के समान हूं। एक अमूल्य रत्न हूं। भगवान की आंखों का तारा हूं। एक चमकता हुआ सितारा। मेरी चमक चारों ओर फैल रही है। सबको प्रकाशित कर रही है। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। शांति ही शांति। अनंत शांति। सब आवाजों से परे बेहद शांति का अनुभव कर रही हूं। देह और देह की दुनिया के सब बंधनों से मुक्त हूं। प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे हूं। अब मुझे कोई भी बांध नहीं सकता। मैं केवल ईश्वरीय बंधन में हूं। यह बंधन ईश्वर के साथ बहुत सुखदाई है। महसूस करें उस सच्चे सुख का, जबकि बंधन मुक्त हो गए, कितना आनंद है इस भगवान के बंधन में। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। व्यक्ति, वस्तु, वैभवों से परे केवल एक परमात्म प्यार, भगवान का प्यार, जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जिनसे और कोई सुंदर नहीं, जो सदा कल्याणकारी है, हितकारी है, सुखकारी है, मेरे सर्व संबंध उनके साथ है। जो सत्य है, अविनाशी है, सदा का साथी है,
याद में हम बाबा यूं खो।
शांति। ओम शांति, ओम शांति। इतनी सारी कन्याओं को देखकर, कुमारियों को देखकर कितना मन हर्षाता है। कन्हैया की कन्याएं कहते हैं ना, दादी प्रकाशमणि इस समय अगर आपको देखती तो कितनी उनको खुशी होती। इतनी सारी कन्याएं भिन्न भिन्न स्थानों से बट्ठी करने पधारी है और इस बट्ठी का नाम क्या है, रिटर्न जर्नी। अब घर जाना है तो सभी कुमारियां तैयार हैं, घर जाने लिए तैयार हैं, हाथ उठाएं अगर तैयार हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी विनाश हो जाए तो सब तैयार हैं, बैग बैगेज बंद है, या ये करना है वो करना है वो करना है, इसी उधेड़ बुन में रहेंगे। बाबा ने हम बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है और हमारा उद्देश्य भी बहुत ऊंचा है। हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बनना है, अधिकतर तो इस उम्र में बहनें ये सोचती होगी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, सीए बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एमबीए करना है, बीबीए करना है, स्पेस रॉकेट में भी जाना है, न जाने क्या क्या महत्वाकांक्षी संकल्प कईयों के मन में आते हैं। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे अब सब कुछ समेट कर घर जाना है। मुझे याद है जब मैं सेकंड ईयर कॉलेज पास कर रही थी, सेकंड ईयर में थी, इंटर साइंस हमारे समय पर था, 11+2। उसके बाद डिसाइड करना था कि मुझे क्या करना है आगे, तो घर में तो सब कहने लगे डॉक्टर बनो डॉक्टर बनो। तो उस समय साकार बाबा थे, 1967 की बात है ये, तब इस शरीर की आयु मात्र 18 साल थी, तो डॉक्टर बनो ये सब कहते थे क्योंकि उसी समय डिसाइड करना था मेडिकल लाइन लेनी है, इंजीनियरिंग लाइन लेनी है, ये लेना है वो लेना है। तो मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं क्या करूं। तो बाबा का जो जवाब आया उसके आधार से मेरा जीवन ही बदल गया। बाबा ने मुझे पत्र लिखा जवाब में, बच्ची बाबा की तुम्हारे में बहुत आश है और बाबा चाहेंगे कि आप रूहानी डॉक्टर बनके विश्व की सेवा करो। ये भगवान ने मुझे लिखा, रूहानी डॉक्टर बनके विश्व की सेवा करो। विश्व कितना बड़ा होता है उस समय संकल्प में भी नहीं था, स्वप्न भी कभी देखा नहीं था क्या विश्व होता है, लेकिन विश्व की सेवा करो रूहानी डॉक्टर बनके। तो जैसे ही बाबा का ये पत्र आया, मैंने अपना संकल्प दृढ़ कर दिया, अब मुझे विश्व की सेवा करनी है। तो देखो भगवान ने हमारी तकदीर ही बदल दी। अगर हम चलो MBBS करते, एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठते या अस्पताल में सेवा करते, कितने मरीजों की सेवा करते, कितनी सेवा करते, कहाँ तक करते। और अभी तो बाबा ने मधुबन बेहद घर में बिठाकर सारे विश्व की सेवा करने का मौका दिया है, नहीं तो करते क्या, एक छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठते थे, थोड़े बहुत मरीज आते थे और क्या। और वो भी आजकल हम देख रहे हैं दुनिया में बीमारियां तो बढ़ती जा रही है, केवल शारीरिक रोग ही नहीं मानसिक रोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, दुख अशांति कितना बढ़ता जा रहा है। और भगवान की हम गोद में बैठकर उनकी छत्र छाया में उनसे शक्ति लेकर विश्व की अनेक तड़पती हुई आत्माओं को शांति का दान दे रहे हैं। तो समय की मांग अभी यही है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो सचमुच हमारा लक्ष्य ही बदल जाता है। तो बहुत सुंदर बट्टी करने आप आई हो कुमारियां, अब घर जाना है, रिटर्न जर्नी करनी है। तो उसके लिए हमारा क्या लक्ष्य हो, क्या उद्देश्य है हमारा, बाबा हमसे क्या चाहते हैं, वो हमारी बुद्धि में सदा होना चाहिए। बाबा ने हमें उद्देश्य तो बहुत ऊंचा दे दिया है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर फरिश्ता बनेंगे, फरिश्ता बनकर वापिस घर जाएंगे और फिर नई दुनिया में आएंगे देवता बनकर। तो उद्देश्य तो बहुत ऊंचा है और उसके लिए लक्ष्य क्या दिया है कि हमें बाप समान बनना है। ब्रह्मा बाबा 33 वर्षों में संपन्न बन गए, संपूर्ण बन गए, इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने, एक की लगन में मगन रहे। जो शिव बाबा ने उनको कहा एकदम आज्ञाकारी बन करके हर श्रीमत का पालन किया। अपनी मनमत नहीं चलाई तो जितने ही आज्ञाकारी थे उतने ही वफादार थे, एक बाबा दूसरा न कोई, उतने ही वफादार उतने ही फरमान बरदार थे। यज्ञ की शुरुआत में शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया कि अभी पवित्र बनो योगी बनो, पवित्र बनो योगी बनो। तो कैसे ब्रह्मा बाबा सहित जो भी बाबा के पास बच्चियां आई सब ने यह प्रतिज्ञा कर ली, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। और वो ही हमारी दादियां बन गई जिनसे हम सब ने प्रेरणा ली है। और आज यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़कर विश्व में प्रख्यात हो रहा है। हम सब उन बाप दादा के राइट हैंड्स बन गए, क्योंकि भगवान हमारे द्वारा विश्व कल्याण कराकर इस धरा पर स्वर्ग रच रहे हैं। तो बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जैसे ही कहा पवित्र बनो योगी बनो बस, और बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। और उसी प्रतिज्ञा के फल स्वरूप आज यह इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा है जिसकी फाउंडेशन, जिसकी नींव पवित्रता है। हम सब यही प्रतिज्ञा करते आए हैं, पवित्र बनो योगी बनो। दूसरा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा अपनी जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारी चल अचल प्रॉपर्टी वो सब कन्याओं माताओं के हवाले कर दो, विल कर दो, कन्याओं माताओं को आगे करो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवताओं का वास है। तो यह भारत फिर से सतयुग बनना है, फिर से स्वर्ग इस धरती पर आना है, तो माताओं बहनों को आगे करो। तो कैसे ब्रह्मा बाबा आज्ञाकारी बनकर मम्मा को आगे किया, हालांकि उस समय मम्मा तो 16 साल की थी, बाबा तो 60 साल के थे। लेकिन सबसे पहले बाबा ने उनको मम्मा कहा, माँ, और वो सबकी माँ बन गई। हालांकि उनसे बड़ी उम्र की और भी बहुत बहनें थी, लेकिन जगदम्बा सरस्वती ये टाइटल शिव बाबा ने उनको दिया और ब्रह्मा बाबा ने उनको कहा मम्मा माँ, तो सबकी माँ बन गई। ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती बन गई और हम सब उनकी हमजिंस है। जो ज्ञान की वीणा बजाने वाली है, वैसे तो देखा जाए पुरुष प्रधान समाज है इस समय, पुरुष प्रधान समाज में पुरुष आगे ही रहा है, लेकिन यह एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय मात्र ऐसी संस्था है जहां नारी आगे है। तो हम बड़े गर्व से कहते हैं the largest women run organization, spiritual organization in the world. सारे विश्व में जो नारी शक्ति के द्वारा संचालित यह एकमात्र ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, और वो भी आध्यात्मिक. सामाजिक तो बहुत होंगे लेकिन आध्यात्मिक. तो यह नशा, ये गौरव बाबा ने हम कन्याओं को प्रदान किया है. तो क्या है हमारा कर्तव्य? हमारा कर्तव्य अब यही है कि भगवान को हम प्रत्यक्ष करें. बाबा ने हम बच्चों को आगे रखा वंदे मातरम कह करके. नारी तू शक्ति है, तू महान है ये कहकर, नारी तू स्वर्ग का द्वार है ये कहकर. तो जैसे बाबा ने हम बच्चों को आगे रखा, कन्याओं को आगे रखा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम बाबा की हर आज्ञा का पालन करें. ऐसे आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बन जाएं. तो बाबा ने उद्देश्य तो बहुत ऊंचा दिया है. कन्याएं बाबा के सामने जाती थी तो बाबा उनसे पूछते थे, बच्ची बच्चियां बताओ आप किससे शादी करोगी? कोट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी? अगर कोट पैंट वाले से शादी करोगी ना तो पीताम्बरधारी नहीं मिलेगा. अब आपको निर्णय करना है, कोट पैंट वाला चाहिए या पीताम्बरधारी चाहिए? कौन चाहिए सबको? हाँ, कौन चाहिए? जो समझते हैं कोट पैंट वाला चाहिए वो हाथ उठाए. जिनको चाहिए वो तो इस भट्टी में होंगी ही नहीं है. वो तो आई नहीं होंगी, लेकिन जो इस भट्टी में आई है इससे सिद्ध है कि हम सबको पीताम्बरधारी चाहिए. श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है, श्री कृष्ण को वरमाला हम पहनाएं. तो राधे बनना चाहोगे या कृष्ण बनना चाहोगे? राधे बनना चाहोगे या कृष्ण बनना चाहोगे? जो कृष्ण बनना चाहते वो हाथ उठाओ. अच्छा, और जो राधे बनना चाहते वो हाथ उठाओ. दोनों का समान मान है, ऐसी बात नहीं है. तो हमने देखा, मैं कहाँ गई थी, कुरुक्षेत्र गई थी. कुरुक्षेत्र में वहाँ बहुत बड़ा मेला किया था, तो सवेरे में शिविर करा रही थी कुरुक्षेत्र में. तो वहाँ पर बहुत घाट बने हुए हैं, तो सवेरे सवेरे राधे 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 राधे, बाबा जैसे कहते ना, नॉन स्टॉप जैसे धुन लगी हुई थी. और जितना समय हमारी शिविर चली उतना समय राधे 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 राधे, पूरा 1.5 घंटा उतना ही समय. तो देखो कैसी धुन लगी हुई थी, राधे 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 राधे. तो शिविर भी करा रही थी पर वो भी तो आवाज कानों में पड़ रही थी कि इतनी लगन है राधे के प्रति भी जितनी कृष्ण के प्रति लगन है. तो इसीलिए दोनों ही आंखों के तारे हैं. शिव बाबा बीज है और उसमें से दो पत्ते निकलते हैं, तो एक राधे एक कृष्ण. तो ये दो पत्ते हम ही बनते हैं. तो इसीलिए इतना ऊंचा बाबा ने हमें उद्देश्य दिया है, श्री कृष्ण की दुनिया में जाना है, श्री कृष्ण समान बनना है, राधे समान बनना है. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले हम संगम युग पर ब्राह्मण बनते हैं, तो संगम युग पर जब ब्राह्मण बनते हैं तो ब्राह्मण माना क्या, किसको हम कहते हैं ब्राह्मण? वैसे तो हम नशे से कहते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, विराट रूप में ब्राह्मण चोटी है, देवताएं भी हमारे से कम है, हम इतने ऊंचे हैं, चोटी है एकदम, और हम सबके ऊपर केवल बाप दादा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा। तो जब इतना नशा हमें ब्राह्मण जीवन का है तो उस नशे के अनुसार हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो किसको कहेंगे ब्राह्मण? भगवान ने ये यज्ञ रचा है, और यज्ञ जब रचा जाता है तो ब्राह्मण चाहिए यज्ञ को संभालने के लिए। और यज्ञ में क्या करते हैं? हर वक्त जब यज्ञ चलता है तो हर वक्त एक आवाज चारों ओर गूंजती है, वो कौन सी आवाज? स्वाहा 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 स्वाहा, स्वाहा स्वाहा की आवाज गूंजती है। पर वो क्या स्वाहा करते हैं? जव तिल और घी, बस। जव चावल का दाना, तिल और घी। और बाबा कहते हैं ये इस संगम की यादगार है, तुम अपना तन मन धन शिव बाबा के यज्ञ में स्वाहा करते हो। तन माना ये शरीर, जैसे शरीर लंबा होता है तो ये जव चावल का दाना जव। फिर तिल माना बहुत सूक्ष्म होता है तो वो मन, तन मन, और फिर घी, घी तो लिक्विड जैसा होता है तो वो धन, क्योंकि घी भी बहुत जरूरी है, तब तो आग भड़केगी ना, आग बढ़ेगी। तो जव तिल और घी, और बाबा कहते वो जव तिल घी नहीं स्वाहा करते लेकिन तन मन धन। ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का। बाबा कई बार कहते हैं कन्याओं के पास तो कोई धन है ही नहीं, लेकिन आजकल तो बहुत धन है कन्याओं के पास, हाँ ऐसी बात नहीं है। सरकार भी कुमारियों के लिए, कन्या के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत योजनाएं बना रही है। इसलिए अभी तो नहीं कहेंगे कन्याएं तो गरीब है, कन्याओं के पास धन नहीं है, नौकरी भी करती है, बहुत अच्छा कमाती भी है, और माँ बाप भी समझते हैं कि कन्या का धन हमें नहीं लेना चाहिए, कन्या तो पराई है, उनका अगर वो कमाती है वो अपना बैंक बैलेंस बनाए, माँ बाप को नहीं चाहिए। तो इसीलिए धन तो, धन से तो सेवा क्यों नहीं करती होगी कन्याएं। मुझे याद है मैं जब छोटी थी, कॉलेज पढ़ती थी, तो मुझे आता था कि मैं स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, शाम को आती थी तो ड्रेस बदल करके कोर्स भी कराती थी, भाषण भी करती थी, और म्यूजियम भी समझाती थी। तो मैं कहती थी चलो तन से तो सेवा कर रही हूँ, मन से सेवा कर रही हूँ, लेकिन धन से तो नहीं कर रही हूँ। तो मैं कॉलेज पढ़ती थी, और कॉलेज पढ़ते हुए भी मैं क्या करती थी, ट्यूशन कराती थी। कॉलेज में पढ़ रही थी मैं, बीएससी किया मैंने, फिर तो कॉलेज भी पढ़ती थी और शाम के समय मैं ट्यूशन करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, और जो मुझे उस ट्यूशन से मिलता था ना वो मैं बाबा की भंडारी में डालती थी, क्योंकि धन से सेवा करनी है। तो देखो, क्योंकि हम माँ बाप से कैसे मांगे, लेकिन अपनी कमाई करनी है, पढ़ना भी है, तो इसी बहाने हम धन से भी सेवा करते थे। तो देखो बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्योंकि वो लगन थी, सेवा की लगन थी, याद की लगन थी, और अंदर में और कोई संकल्प नहीं था, दुनिया की तरफ तो आकर्षण ही नहीं था। मेरा लौकिक भाई अमेरिका में वो पढ़ने गया, फिर वहां जॉब कर रहा था, तो उसने मुझे बहुत बुलाया, आप अमेरिका आओ, यहां तुमको आगे पढ़ाएंगे। मैंने कहा अमेरिका में माया है, मुझे नहीं जाना है, माया है वहां। मेरी बुआ मुझे ज्योतिषी के पास ले गई कि इसको भाई अमेरिका बुला रहा है, ये जाती नहीं है। तो उसने मेरा हाथ देखा और कहा, अरे ये तो कई बार जाएगी, एक बार तो क्या, कई बार जाएगी, इसकी विदेश की रेखा बहुत स्ट्रांग है। तो देखो बाबा का बनने के बाद सारी दुनिया घूम ली हमने, ऐसे ही कहेंगे, हर साल जाते हैं विदेश, इतने बाबा के सेंटर्स हैं, 140 देशों में सेंटर्स हैं, और वहां से मधुबन में आते हैं भाई बहने, तो वो उनके पास भी जाना होता है। तो इसीलिए कहा कि ये नहीं जा रही है, और कहा बाबा ने हमको सारी दुनिया में भेजा। तो देखो ये किसकी कमाल है, क्योंकि ये एक लक्ष्य रखा कि एक बाबा दूसरा न कोई, एक बाबा दूसरा न कोई। मुझे कहा गया अच्छा तुम नौकरी करो, मैंने कहा बाबा कहते नौकरी टोकरी नहीं करनी है, क्या चने भूरे के लिए नौकरी टोकरी करूं, कितना मुझे मिलेगा, भगवान तो हमें हीरे दे रहा है, कदम कदम में पद्मों की कमाई करा रहा है, मैं चंद वो चनों के लिए मैं नौकरी करूं और लोगों की चाकरी करूं, उसे तो मैं भगवान की सेवा क्यों ना करूं। बस एक सेकंड में कैसे हमने निर्णय कर लिया कि हमको तो बाबा की सेवा करनी है, और देखो बाबा ने कहां से कहां बिठा दिया। बस एक निश्चय चाहिए, एक बल, एक भरोसा चाहिए। भले मैं कॉलेज पढ़ती थी, कॉलेज में सब मुझे मीराबाई कहते थे, ये मीराबाई है, क्योंकि आपस में जब लड़कियां बात करती थी तो पिक्चर की बात करेगी, कोई बॉयफ्रेंड की बात करेगी, उस समय तो इतना नहीं होता था, आजकल तो बहुत जमाना खराब है, लेकिन उस समय भी जो कुछ होता था, और मैं जैसे पहुंच जाती थी तो चुप हो जाते थे, क्योंकि मुझे उनको मालूम था इनको ये सब बातें पसंद नहीं है, तो इसीलिए फिर वो हमसे कुछ न कुछ और बातें पूछ लेती थी, ज्ञान की बातें। तो बाबा ने कैसे शुरू से ही एक न्यारी प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, तभी तो देखो कहां से कहां पहुंचा है बाबा ने। तो बस एक लगन चाहिए, और जैसे बाबा कहते हैं कि तुम्हें बाप समान बनना है, तो ब्रह्मा बाप में जो विशेषताएं थी, क्या मेरे अंदर वो विशेषताएं हैं? क्योंकि इतना ऊंचा बनना है तो सारी कमियां, खामियां, कमजोरियां ये हमें निकालनी होगी, ये दाग निकालने होंगे, जो 63 जन्मों का के दाग लगे हुए हैं आत्मा पर। आत्मा जो इतनी शुद्ध पवित्र थी, वो दाग लगने से उसकी चमक ही खत्म हो गई है। तो ये दाग कैसे निकलेंगे? 63 जन्मों के पापों का बोझ है हमारे सिर पर। कल बाबा की जो मुरली चली थी, बाबा ने उसमें कहा कि तुम बच्चे डबल कमाई करते हो, एक याद की कमाई, याद में भी कमाई है, और दूसरा स्वदर्शन चक्र फिराते हो, ये भी कमाई है। तो मैं सोच रही थी याद में कमाई है और स्वदर्शन चक्र घुमाने में भी कमाई है, इसका इसके पीछे क्या राज है। तो देखो, हमारे सिर पर 63 जन्मों का बोझ है, क्योंकि 63 जन्म हम माया के वश हुए हैं। 63 जन्म, एक जन्म नहीं। भले कुमारियां कहेगी इस जन्म में तो हम पवित्र हैं, हम तो पवित्र कुमारियां हैं, कन्याएं हैं, लेकिन 63 जन्म तो कितने पाप किए होंगे। कई हम लोगों से पूछते हैं, बड़ा विचित्र प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो तो गृहस्थी है, तो वो हम लोगों को कहते हैं, जो कन्याएं हैं हम लोगों को कहते हैं, आप लोग तो कुमारियां हो, आप लोग तो कन्याएं हो, आपको गृहस्थ जीवन का क्या अनुभव है, आप लोगों को तो कोई अनुभव नहीं है। तो हम क्या जवाब देते हैं, हम कहते हैं भले इस जन्म में अनुभव नहीं है, लेकिन 63 जन्म तो अनुभव किया होगा कि नहीं किया होगा, ऐसे थोड़ी नहीं किया होगा, वो संस्कार क्यों नहीं है आत्मा के अंदर, और उनके कारण कितना हमारे सिर पर पापों का बोझ है। तो हमें तो यही चिंता है कि वो पापों का बोझ कैसे उतारे। जैसे किसी के ऊपर बहुत कर्जा हो तो उसको इतना कमाना है मानो कि वो कर्जा भी चुकता कर सके और इतनी और कमाई करके जमा का खाता भी बढ़ा सके, तो कितनी उसको कमाई करनी होगी। एक तरफ कर्जा चुकता करना है और दूसरी तरफ जमा भी करना है बैंक में। तो हमारे सिर पर 63 जन्मों का कर्जा है, 63 जन्मों का पापों का जो बोझ है, ये कर्जा है, क्योंकि इस कर्जे के साथ हम आत्माएं मुक्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, हमें ये कर्जा चुकता करना पड़ेगा। तो कर्जा अगर चुकता करना है तो कितना कमाना होगा, पर कौन सी है हमारी कमाई जिससे कर्जा चुकता होता है, वो है याद की कमाई। क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तेरे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो याद भी एक कमाई है, जिस कमाई से कर्जा चुकता होता है। और फिर स्वदर्शन चक्र फिराओ तो विकारों के गले कट जाएंगे, तो फिर और कोई पाप नहीं होगा। तो स्वदर्शन चक्र फिराओ माना 5 स्वरूपों को स्मृति में लाओ, हम क्या थे फिर क्या बनना है। और जब 5 स्वरूपों को बुद्धि में लाएंगे तो हम कलयुग में आकर पड़े वो याद नहीं आएगा, लेकिन द्वापर कलयुग में हम इष्ट थे, सबके पूजनीय थे, इतने भरपूर थे, हमारी मूर्तियां भी इतनी भरपूर थी, सत्युग त्रेता में हम कितने भरपूर थे उसकी, और उस कैसे प्रमाणित करें कि सत्युग त्रेता में इतने भरपूर थे, जो द्वापर कलयुग में जो हमारी मूर्तियां बनी वो भी कितनी भरपूर, कोई खंडित मूर्ति पूजा के योग्य नहीं होती है। अगर खंडित हो गई तो उसको मंदिर में नहीं रखेंगे, उसको किसी म्यूजियम में रख देंगे या बगीचे में रख देंगे, है ना, बगीचे में बहुत खंडित मूर्तियां रखते हैं। पर मंदिर में कौन सी मूर्ति पूजी जाती है जो अखंड मूर्ति हो। एक आंख भी टेढ़ी होगी ना लक्ष्मी की अगर ऐसे बनाई, और एक आंख टेढ़ी है वो भी काम नहीं आएगी, मंदिर में नहीं पूजी जाएगी। एकदम 100% शरीर एक्यूरेट। तो जब द्वापर कलयुग में हमारी मूर्तियां ही इतनी संपन्न संपूर्ण हैं, तो सतयुग में क्या नहीं होंगे। तो तन निरोगी, मन इतना शक्तिशाली, जो आज कोई मूर्ति कोई देखता है उनको मन में शांति होती है, केवल मूर्ति का दर्शन करते ही उनको शांति मिलती है, तो जीवन में कितनी शांति होगी हमें। और धन की तो कोई कमी नहीं, क्या नहीं मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, सबसे ज्यादा चढ़ावा बालाजी में चढ़ता है, कितना चढ़ता है। तो अगर धन की भी कोई कमी नहीं मूर्तियों को, तो आप सोचो चेतन में क्या धन की कमी होगी। अभी हम चने भुगरों के लिए जाएं, जबकि भगवान हमारे भंडारे भरपूर कर रहे हैं। और फिर तन मन धन जन, संबंधों में इतना सुख, इतना सम्मान, तो संबंधों में भी इतना सुख, जो आज भी भक्त साष्टांग नमस्कार करते हैं मंदिरों में देवताओं के आगे, साष्टांग नमस्कार, ऐसे नहीं खाली हाथ जोड़ते हैं, कई इतने ऐसे भक्त होते हैं बस सीधा लेट जाएंगे। तो जबकि मूर्तियों को भी इतनी प्राप्ति है, तो हम कितने बड़े चेतन देवता बन रहे हैं। तो ये पांच स्वरूपों की स्मृति ही हमें मालामाल कर देगी, हमारे अंदर खुशी की लहर ले आएगी, इतनी ऊंच स्थिति हमारी बना देगी। और संगम पर ब्राह्मण बनना, ये तो अहो सौभाग्य। चाहे लौकिक में ब्राह्मण कितना भी कहते हैं, हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है, लेकिन कोई ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण किसको कहा जाता है। ब्राह्मण शब्द में जो ब्रह्मा शब्द है उसके साथ कितने शब्द जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला उठे। अगर अमृत वेला नहीं उठते हैं तो ब्राह्मण कहाँ कहलाएंगे। एक तो श्रीमत का उल्लंघन किया, लेकिन ब्राह्मण भी कहाँ कहलाए अगर अमृत वेले नहीं उठते हैं तो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये ब्राह्मण की पहली निशानी है। फिर ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार करे, जो शुद्ध पवित्र भोजन स्वीकार करे, वो ब्रह्मा भोजन खाए वो ब्राह्मण। तीसरा, ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मा का आचरण करना, ये है सच्चा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा बाबा ने जो किया वैसा ही हमें आचरण करना है। और चौथा, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, है तो शिव बाबा का ब्रह्मा बाबा द्वारा दिया हुआ ज्ञान, जिसके पास है वही सच्चा ब्रह्म ज्ञान है। तो हमें ये चारों प्रकार का जो की जो प्राप्ति है, यही सच्चे ब्राह्मण की प्राप्ति है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मचर्य और ब्रह्म ज्ञान। वो तो समझते हैं ब्रह्म ज्ञान माना बहुत ऊंचा ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, लेकिन ब्रह्म क्या है बाबा कहते, वो तो आपका घर है, उस घर में तो सभी को जाना है, वो तो एक तत्व है, और आप बच्चे तो हाँ उस घर के वासी हो, मालिक हो, हम सब जाएंगे उस घर में। और यहाँ तक बाबा कहते हैं उस घर में तो सबको जाना है, चाहे किसी की इच्छा हो या न हो, सबको जाएंगे, सबको जाना है, भगवान सबको ले जाएगा, जबरदस्ती भी ले जाएगा, लेकिन उसके लिए पवित्र होकर जाना है। और पवित्र कैसे होंगे, दो तरीके हैं पवित्र होने के, या तो योग बल या तो सजा बल। अभी आपको डिसाइड करना है योग बल से पवित्र होकर जाना है या सजा खा करके पवित्र होकर जाना है। तो सभी क्या कहेंगे, हाँ सजा खाकर जाना है, कोई बात नहीं, यहाँ तो मौज कर लो, हाँ कोई बात नहीं सजा खा लेंगे। कई बार होता है ना कोई गलत काम करता, कहता अभी तो मौज कर लो फिर देखा जाएगा, मम्मी डैडी डांटेंगे, कोई बात नहीं अभी तो मौज कर लो। तो अभी मौज कर ले और बाद में सजा खाएं, और केवल सजा खाएं ये बड़ी बात ये तो है, लेकिन भगवान का नाम कितना बदनाम करेंगे। वैसे भी हम कहते हैं हम किसने हमको इस दुनिया में भेजा, भगवान ने भेजा, तो भगवान ने जो हमें भेजा है हमें वही कर्म करना है जिससे भगवान का नाम रोशन हो। आज जैसे कोई कंपनी होती है उसमें उनके कार्यकर्ता है, कोई भी है ऑफिसर है मानो, और उसको कंपनी विदेश भेजती है कुछ सीखने के लिए, कुछ और अनुभव करने के लिए, जो कंपनी में काम हो आएगा, फैक्ट्री में कंपनी में काम आएगा, लेकिन और वो जाता है कंपनी के खर्चे से, लक्ष्य है कि वो सीख करके आना है, अनुभव करके आना है, पर उसकी जगह वो घूमने फिरने चला जाए, खाने पीने चला जाए, मौज करे, ऐश आराम करे, तो वापस आएगा तो उसको सजा मिलेगी ना कि नहीं मिलेगी? वो कहेगा कि अभी तो ऐश कर लो फिर जो होगा देखा जाएगा, नहीं। तो भगवान ने हमें सृष्टि पर क्यों भेजा, कई कहते ना क्यों भेजा भगवान ने हमको इस दुनिया में, क्या पड़ी थी भगवान को हमें दुनिया में भेजने की? लेकिन बाबा ने तीन लक्ष्य दिए हम बताते हैं, तीन लक्ष्य दिए हैं जो इस दुनिया में हम आए। अभी ब्राह्मण बने तो उसके लिए लक्ष्य उसी अनुसार है, लेकिन दुनिया में क्यों आए? आत्माएं परम धाम में थी, बैठी रहती थी, यहां क्यों आए? लेकिन तीन लक्ष्य लेकर के आए। एक लक्ष्य क्या था, इस सृष्टि मंच पर एक्टर बन के आए, एक्टर, हर एक को अपना अपना रोल बजाना है। इस रोल जो रोल हम बजा रहे हैं हमको अपने ऊपर ही ध्यान देना है, दूसरा क्या रोल बजा रहा है उसकी चिंता नहीं करनी है, वो कुछ भी करे उसका कर्म, मुझे क्या करना है वो देखना है, मुझे अच्छे से अच्छी एक्टिंग करनी है जो भी मुझे रोल मिला है, ये है पहला लक्ष्य। और दूसरा अच्छे से अच्छी एक्टिंग किसको कहते हैं, कि मन वचन कर्म से आत्मा के जो मूल गुण हैं वो सबको बांटने हैं, मन वचन कर्म से, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति हम कहते हैं ना, ये मन से भी देना है, वचन से भी देना है, कर्म से भी देना है, देने की भावना हो, ये दाता बन करके देना, इस लक्ष्य से हम इस दुनिया में आए। और ये गुण शक्तियां ज्ञान मन से हम शक्ति बांटते हैं, वचन से ज्ञान बांटते हैं, और कर्म से गुण बांटते हैं। तो ये मन वचन कर्म हम दूसरों को भी बांटे साथ साथ, ताकि ये हमारा और बढ़ता है, इसलिए हम आए। और तीसरा उस परमात्मा का नाम रोशन करना है। तो हम दुनिया वालों को ये कहते हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें क्या सचमुच हम भी ये कर रहे हैं? जो मुझे पाठ मिला है मैं अच्छे से अच्छा बजा रही हूं, क्या मैं उस पाठ में जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, गुण दिए हैं, शक्तियां दी है, खजाना दिया है, वो मैं बांट रही हूं? या मुख से कुछ ऐसे अपशब्द निकल आते हैं, या हमारे कर्म कुछ विकृत हो जाते हैं, हमारा अंग अंग शीतल हो जाना चाहिए, ये आंखें शीतल हो जाए, ये हस्त कमल, हृदय कमल, चरण कमल, ये सब कमल सदृश शीतल हो जाए, जिनके ऊपर कोई लेप छेप न लगे, कोई दुष्प्रभाव संसार का न लगे। ये हाथ कैसे हो, ये हाथ जैसे देवियों का हाथ कैसे दिखाते हैं, वरदानी हाथ, एक वरदानी हाथ ऐसा, दूसरा आशीर्वाद का हाथ, भले छोटे हैं उम्र में परंतु हम भी आशीर्वाद दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, वरदान क्यों नहीं दे सकते हैं? जो भरपूर होता है वो वरदान देता है, आशीर्वाद। बाबा कहते हर एक अपने ऊपर आशीर्वाद करे, जो बाबा की श्रीमत मिलती है उस श्रीमत अनुसार चले तो अपने ऊपर आशीर्वाद करता है। और फिर दाता के हाथ, लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे उसके हाथ से गिनिया निकल रही है, दिखाते ना कई चित्रों में, तो ये ज्ञान रत्न दे रही है, गुण बांट रही है, शक्ति बांट रही है। तो बाबा कहते हैं ये हमारे व्यवहार से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्प से हो। ये हाथ अगर वरदान का हाथ है तो इतना श्रेष्ठ है ये, लेकिन ये हाथ किसी को थप्पड़ मार दे, मारते हैं ना, थप्पड़ मार देते हैं, ये मुख किसी को अपशब्द कह दे, ये मन में किसी के लिए अशुद्ध सोच ले, बुरा हमारा ही होगा, दूसरे का नहीं होगा, हमारा ही होगा। हम कहते हैं ना जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो पहले खुद गिरता है, दूसरा नहीं गिरेगा, जिसने खड्डा खोदा वो ही गिरेगा। चलो किसने भूल भी कर दी, परंतु अगर हम किसी की भूल को क्षमा नहीं करते तो उसकी भूल को क्षमा नहीं करते ऐसी बात नहीं है, हम खुद को क्षमा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका एक का चिंतन चलता रहेगा, हम खुद को भी दुखी करेंगे क्योंकि क्षमा नहीं कर सकते। अगर हमारे से कोई भूल हो गई क्षमा मांग लो, मुक्त हो जाओगे। अगर दूसरे ने कोई भूल कर दी क्षमा कर दो, मुक्त हो जाओगे, नहीं तो पाप का बोझा चढ़ता रहेगा। तो बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ये हमें ध्यान देना है कि कोई भी प्रकार का पाप का बोझा हमारे ऊपर न चढ़े, नहीं तो एक गुना तो क्या 100 गुना हो जाएगा। कलयुगी दुनिया में हमने जो पाप किए, ज्ञान नहीं था तो 1 गुना थी सजा, अभी ज्ञान मिल गया और फिर भी कोई ऐसा पाप किया किसी विकार के वश तो वो 100 गुना हो जाएगा। इसीलिए वैसे भी कानून के अंतर्गत कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको कोई कानून का पता नहीं है और आपने ऐसा कर्म किया जो कानून के विरुद्ध है, और आप उस समय का मुझे तो पता ही नहीं था, ये बहाना नहीं चलेगा। आपने क्यों नहीं वो कानून पहले समझ लिया करने से पहले। जैसे मिसाल देते हैं, कोई भारत में गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, तो हम लोग तो भारत में तो लेफ्ट से चलाते हैं, लेफ्ट। अभी जिसको लेफ्ट से चलाने की आदत हो और वो अमेरिका में चला जाए और वहाँ तो राइट से चलते हैं, राइट, सब कुछ वो राइट से चलते हैं। जैसे भारत में लेफ्ट से गाड़ी आ जाती है, वो राइट से गाड़ी जाती, लेफ्ट से आती है। अब वो कहे नहीं मैं तो भारत में लेफ्ट से ही चलाती हूँ, मैं अमेरिका में भी आई हूँ तो भी वैसे ही करूँगी, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, हाँ एक तो एक्सीडेंट होगा, वो तो होगा ही, और क्या होगा, हाँ तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। और आपको नहीं नहीं मैं तो भारत में तो लेफ्ट से चलाती थी ना, मैं ऐसे ही करूंगी क्योंकि मैं भारत में ऐसे करती थी, लेकिन भारत के कानून अलग है, अमेरिका के कानून अलग है, आप ये नहीं कर सकते। तो इसीलिए कानून को न जानना ये बहाना हम नहीं दे सकते हैं। तो जैसे हम बाबा के बने, बाबा ने हमें श्रीमत दी और जैसे श्रीमत दी उस अनुसार अगर हम करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कदम कदम में पद्मों की कमाई है। और अगर श्रीमत का उल्लंघन किया तो 100 गुना सजा भी है। वो जैसे आपने देखा होगा ना, एक खेल है सांप और सीढ़ी का खेल, स्नेक एंड लैडर, स्नेक्स एंड लैडर गेम, ये गेम खेलते हैं। तो उसमें कुछ सीढ़ियां भी दिखाते हैं, कुछ सांप भी दिखाते हैं। तो आप नीचे हैं और आपके आगे सीढ़ी आ गई तो फट से आप ऊपर चढ़ जाएंगे, फट से। लेकिन ऊपर पहुंचकर एक सांप भी है और अगर उस सांप तक पहुंचे तो क्या होता है, सीधा नीचे। आप इतना चढ़ के ऊपर गए और एकदम वापस नीचे आ गए। तो इसीलिए कहा जाता है चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर, ये है लंबी खजूर। जैसे खजूर का पेड़ होता है, कोई चढ़ जाए सचमुच तो वो तो रस चख लेगा, पर अगर गिर गया उस पेड़ से तो चकना चूर जाएगा क्योंकि बहुत ऊंचा होता है। और खजूर के पेड़ के लिए दूसरी भी कहावत है, क्या कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर। क्या फायदा इतना बड़ा कोई आदमी हो खजूर के पेड़ की तरफ, चाहे हाइट में बड़ा नहीं पोजीशन में बड़ा। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे लंबी खजूर, पंथी को छाया न दे और फल लागे अति दूर। वो किस काम का है खजूर का पेड़, उसके पास खजूर है, लगे हुए हैं खजूर, लेकिन वो काम का नहीं है क्योंकि कौन चढ़ेगा वो खजूर तोड़ने के लिए, दो चार खजूर तोड़ने के लिए टांग तोड़ेगा क्या, कोई चढ़ेगा भी नहीं। और पंथी को छाया न दे, इतना ऊंचा होता है उसके जो पत्ते होते हैं ना वो कोई ज्यादा छाया थोड़ी देते हैं। छाया कौन से पेड़ देते हैं जो थोड़े झुके हुए हो, जिनका फैलाव हो पत्तों का, वो ही छाया दे सकते हैं। तो इसीलिए खजूर के पेड़ के लिए ये दो गायन है। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, अगर आप बाबा की श्रीमत पर चलो तो इतना ऊंचे चढ़ जाओगे मनुष्य से देवता बन जाओगे, नारी से नारायणी बन जाओगे, नर से नारायण बन जाओगे। पर श्रीमत का कहां भी उल्लंघन किया तो बाबा कहते 100 गुना सजा। चलो अगर उल्लंघन हुआ भी माफी मांग ली तो आधा माफ हो जाएगा, लिख करके दे दिया बाबा कहते पूरा माफ हो सकता है क्योंकि अंदर में परिवर्तन कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, चलो संकल्प कर लिया, हिम्मत रख ली कि आगे नहीं करेंगे तो बाबा भी माफ कर देगा, क्यों नहीं करेगा। और ही अगर कोई गलती की है तो बाबा को सच्चाई से लिख के दो, बड़ों को कहो ये मेरे से गलती हो गई है और माफी मांग लो, माफी ले लो। तो अगर कोई भूल की तो छिपाओ नहीं, और अगर कोई अच्छी सेवा की तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। कई बहुत वर्णन करते हैं, मैंने ये अवार्ड लिया, मैंने वो लिया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने इतनी सेवा की, इतने लोगों को समझाया, ये किया वो किया। बाबा कहते अगर सेवा की ना अच्छा किया, जितना वर्णन करते जाएंगे ना उतना आपकी जो प्राप्ति होगी वो कम होती जाएगी। इसलिए क्या कहते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी करने के लिए कोई शो नहीं करना है, अच्छा काम करना है तो करो, पूछो भी नहीं किसी से। नेकी और पूछते रहेंगे तो 10 लोग 10 बातें कहेंगे, अच्छा काम है करो। आप जितना करोगे उतना आपका भाग्य बनेगा, सोचो नहीं, पूछो नहीं, गुप्त करो। और ये आपका दायां हाथ कोई सेवा करता है, कोई करता है, तो बाएं को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतना गुप्त हो। तो अच्छा कार्य भले करो, गुप्त रूप से बाबा बैठा है फल देने वाला। ये नहीं सोचो मैंने इतनी सेवा की, मेरे से किसी ने पानी भी नहीं पूछा कि तुम इतना सेवा करके आई हो, थोड़ा हाँ ये टोली खाओ, पानी पियो, ये भी नहीं पूछा। मैंने इतनी सेवा की, अब वो जो इतनी सेवा की और ये संकल्प आया, पानी भी नहीं पूछा, टोली भी नहीं दी, तो वो सेवा का फल खत्म, क्योंकि अंदर में संकल्प किया मैंने इतना किया, वो अभिमान आ गया ना, तो पुण्य खत्म। ये समझ लो इतना गहरा राज है कर्म का। और अगर गलती की और छिपाया और दूसरे को अगर किसी ने देख लिया, उसको भी आपने कहा देखना, ये बताना नहीं, छिपाया, तो जितना समय छिपाया अपना मन तो खाएगा, और मन खाएगा तो अंदर में आत्मा कमजोर होती जाएगी, ये कमजोर होती जाती है। इसकी बजाय बता दो और निश्चिंत हो जाओ, जो भी सजा मिलनी होगी मिलेगी, कोई बात नहीं, हमने सच तो बता दिया, तो अंतर में आत्मा तो तृप्त होगी ना, संतुष्ट होगी कि सच बता दिया। सिर्फ प्रतिज्ञा कर लो, दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि मम्मा हमेशा कहती थी पुरुषार्थी किसको कहा जाता है, पुरुषार्थी उसको कहा जाता है जो अगर एक बार भूल हो गई ना, चलो हो गई, लेकिन इतना दृढ़ संकल्प कर ले कि वापस वो दोबारा न हो, तब कहेंगे वो सच्चा पुरुषार्थी है। खाली सॉरी 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 करने से कुछ नहीं होगा, प्रतिज्ञा कर ले कि दोबारा नहीं करेंगे। ये अगर हमारे अंदर में लक्ष्य होगा कि मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, और जो बाबा चाहते हैं वो मुझे करना है, ये जो मैं कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, अगर बाबा इस समय यहाँ होते तो क्या करते, मुझे वैसे ही करना है, मुझे बाप समान बनना है, बाबा को फॉलो करना है, शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, मम्मा को फॉलो करना है। हाँ, बाबा के पास कई आते थे, बहुत बुजुर्ग लोग भी आते थे बाबा के पास, बाबा अभी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अभी क्या करेंगे हम, कुछ होता नहीं शरीर से, अंग बहुत कमजोर हो गए हैं, शरीर चलता नहीं, बाबा अभी कैसे करेंगे, ये नहीं होता नहीं होता। बाबा कहते थे ये बूढ़ा बाबा, ये 93 वर्ष का था, अंत तक सेवा की, ये बूढ़ा बाबा कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। फिर कन्याएं आती थी, यंग बहनें आती थी, वो कहती थी बाबा हम अभी दुनिया ही नहीं देखी हमने, तो बाबा कहते थे मम्मा को देखो, मम्मा कितनी यंग आई और एक धक से स्वाहा हो गई, तो मम्मा को देखो, तो जो जवान है वो मम्मा को देखे। 45 इयर्स की उम्र में मम्मा ने तो अपना देह भी त्याग किया, अव्यक्त विदेही स्थिति को प्राप्त कर लिया, इतनी में क्या नहीं स्ट्रांग पुरुषार्थ किया। तो इसीलिए आप सभी आए हो बट्टी में, यह लक्ष्य रखना कि अभी हाँ घर जाना है, रिटर्न जर्नी है हमारी, जो बाबा कहते उस अनुसार हमें करना है। इतने राइट हैंड्स भगवान को मिल जाए तो विश्व की कितनी सेवा जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति।